ஓம் சாந்தி, ஓம் சாந்தி, ஓம் சாந்தி, ஓம் சாந்தி. இத்தனை பிரேம் சே போலாம் ஜோ லண்டன் தக் ஆவா ஜாய் ஜானகி தாதி கே பாஸ். ठीक है, ஓம் சாந்தி, ஓம் சாந்தி, ஓம் சாந்தி. ये हो गई एक्सरसाइज, हो गई सब भाग गई सुस्ती देवी, क्योंकि ये समय ऐसा है जहां थोड़ा थोड़ा सुस्ती का वास होता है. ठीक है ना, आप सबको देखकर मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है कि ये पहली प्रकार की भट्टी है अपने पुराने भाई बहनों की जो बहुत कायदे से नियम के अनुसार और बड़े दिल से लगन से इस भट्टी को आरंभ अटेंड कर रहे हैं और साथ साथ योग तपस्या भी कर रहे हैं. जब मैं यहां आई तो चारों ओर बहुत बहुत शांति शांति सुखद सुखद स्थिति का अनुभव हो रहा था. पवित्रता तो जहां पवित्रता है वहां सुख शांति तो है ही है ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था. आज का टॉपिक बहुत सुंदर है, सरस त्याग और तपस्या. आप देखिए हम सब बच्चों को प्राण बाप दादा ने एक लक्ष्य दिया है, ये बच्चे तुझे ब्राह्मण से देवता, देवता से फरिश्ता बनना है. अर्थात इसी जीवन रूपी यात्रा का अंतिम पहरा कर्मातीत और विकर्माचीत है. है, हम सबका लक्ष्य है कि हम कर्मातीत भी बने और विकर्माजीत भी बन जाए. अब वो कैसे बनेंगे हम, तो उसके लिए त्याग, तपस्या और वैराग तीनों ही हमारी आधारशिला है उस कर्मातीत या विकर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने की. क्योंकि तप के बिना भी प्राप्ति नहीं और त्याग के बिना भी प्राप्ति नहीं हो सकती. त्याग हमें सबसे ऊंचा भाग्य देता है और तप हमें कर्मातीत बनाता है. त्याग से हमारी इनर शक्तियां जागृत होती हैं और हमें सूक्ष्म रूप एक बहुत बड़ा बल मिल जाता है. क्योंकि हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, हमारी इनर शक्तियां सुषुप्त हुई होती है, परंतु जब हम त्याग करते हैं, त्याग की लो जब हमारे अंदर जागृत हो जाती है तो वो जागृत होने लगती है और तपस्या उसके अंदर निखार पैदा करती है. जैसे कोई चीज को धो धो करके, जैसा कपड़ा बहुत मैला है, मैले कपड़े को आप अच्छी तरह से धो धो करके भट्टी में चढ़ा करके टीनों बॉल वगैरह नील टीनों बॉल लगा लेंगे तो एक निखरा हुआ रूप दिखाई देता है. इसी प्रकार तपस्या जो है हम सबके अंदर निखार पैदा करती है. तो दोनों का समन्वय होना हम सबके जीवन में बहुत बहुत जरूरी है. कहते हैं जहां त्याग, तपस्या, کا واس ہوتا ہے وہاں ہی جیون روپی گلدستے میں دیوے گنوں کی مہک آتی ہے. کیونکہ تیاگ ہے, تپ ہے, ویراگ ہے, شریشٹھ اور مہان جیون بنانے کے لیے یہ پرم آوشیک ہے. ہم نے شروع شروع میں انبھو کیا جب میں نے 14 کی بٹھی کر کے آئی تھی, کیا کندن ان کے شریروں سے ایک بہت شدھ سونے جیسا تبا ہوا پرواہ دکھائی دیتا تھا. حالانکہ وہ بولنا اتنا, گیان سنانا اتنا نہیں جانتے تھے, ایک ہی بات کو 10-10 بار ریپیٹ کرتی تھی, پرنتو بابا نے ان کو 14 کی بٹی میں اس لیے ہی ڈالا تاکہ اس بٹی سے وہ کندن بن کر کے نکلے, سونا بن کر کے نکلے اور اپنے رہے کوئے سنسکاروں کو, سواہا سواہا پرانی عادتوں کو سواہا سواہا کر کے ایک اجول کلین سوچ شدھ بن کر کے نکلے. اور سچ مچ وہ سوروپ آج بھی ہم لوگوں کے آنکھوں کے آگے آتا ہے کہ وہ کتنی کندن تھی جو آج بابا ہم بچوں کو کہتا ہے, بچے تمہاری نظر ایسی ہو جو دوسروں کو نہال کرنے والی ہو, تمہاری درشٹی ایسی ہو جو دوسروں کے سنسکاروں کو چینج کرنے والی ہو, تمہاری ستھتی ایسی ہو جو تمہارے نزدیک کوئی آئے ان کا جیون اپنے آپ پہ بدل جائے. آج ہم اگر سوچے وہ بہنیں جو 14 بٹی کر کے نکلی تھی, ان میں وہ چمک, وہ دمک, ان کے للاٹ میں وہ تپ کا تیز دکھائی دیتا تھا. تپ میں تیز ہے, تپ میں شکتی ہے, پرنتو تپسیا, تپ تپسیا کے بنا تیاگ کچھ کام کا نہیں رہتا. تیاگ اور تپسیا جب دونوں کا جیون کے اندر سمنیا ہوتا ہے تبھی جیون مہان بن سکتا ہے. جیسے آپ اور ہم سب نے تیاگ کیا, کیونکہ تیاگ کی پریبھاشا کیا ہے, سب سے پہلا تیاگ بابا نے ہم بچوں کو کیا کرایا, پہلی بات بابا نے ہمارے سامنے کون سا رکھی, ہے بچے تجھے اگر سر پراپتیوں سے بھرپور بننا ہے, سمپن بننا ہے تو دے, دے کے دھرم, دے کے سمن, دے کی سب وستوں سے بدھی یوگ لگا دے. تو وہ سنیاسی نہیں ہے جو گھر بار چھوڑ کر کے چلے جائیں گے, تم وہ سنیاسی ہو جن کے جیون میں سیم دھارنا نیم شریمت کا پورن پالن ہوگا, جو سنسار میں رہتے ہوئے پریواروں کے بیچ میں رہتے ہوئے تمہارے کو اس پرکار سے جیون جینا ہے جو جیون میں اپنے آپ میں تیاگ اور تپ دونوں ہو, جس سے تیرا جیون نکھرتا چلا جائے. اور آپ دیکھیں گے کہ ہم میں سے جن بچوں نے بابا کی ان باتوں کو سامنے لایا, جیون میں لایا, آپ ان کے جیون کو دیکھتے ہوئے, ان کے شکلوں کو دیکھتے ہوئے ہی محسوس کریں گے کہ یہ تو کندن کے سامان بنتے جا رہے ہیں. ان کے ہاں باو میں ستیہ, پویترتا, روحانیت, دیوتا کا پرویش ہے. क्योंकि जब तक सत्यता, पवित्रता, रूहानियत और दिव्यता का प्रवेश नहीं आता हम सबके जीवन के अंदर, तब तक ये समझिए कि वो त्याग नाम का त्याग है, वास्तविक त्याग नहीं। त्याग में भी क्या करना, त्याग की क्या परिभाषा है कि जो चीज हमने समर्पण कर दी, दे दी, वो चीज मेरी अपनी नहीं। जैसे अज्ञान काल में हम बोलते थे, प्रभु तुम जब धरा पर आओगे तो मेरा तन, मेरा मन, मेरा धन, मेरा सब कुछ मैं तुझ पर बलिहार जाऊंगा, एक बार सिर्फ मेरा हाथ पकड़ लो, एक बार सिर्फ मुझे दर्शन दे दो तो मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। आप देखेंगे आज हम सब बच्चों ने, वो तो एक बार हम बच्चों ने जब परमात्मा पिता धरा पर आए तो हम, उसने हमारा हाथ पकड़ लिया। हमने पकड़ना तो था ही, परंतु पहले उसने हमारा हाथ पकड़ा बच्चे बच्चे कहकर, और फिर क्या कहा कि ये बच्चे जो तेरा तन है, मन है, धन है, शरीर है, देह है, देह के संबंध है, देह के बदारत है, उन सब से तू बुद्धि निकाल ले, तो मैं तेरे सर्व पापों से तुझे मुक्त कर दूंगा। ये कहा बाबा ने, और आज यही बात हम अपने जीवन में फिर दोहराते हैं कि हमने जो बाबा ने हमें कहा, हमने उसको फॉलो किया, तो फॉलो करने का अभिप्राय ये हुआ कि ये देह मेरी नहीं है। जैसे आप देखेंगे घर है, घर के अंदर नाना प्रकार की सामग्रियां होती हैं। जब घर किसको दे दिया तो फिर उस घर के अंदर ममता नहीं रहती, समझते ये मेरा घर नहीं है, मैंने बेच दिया है, मैंने दे दिया है ना? ठीक है ना? इसी प्रकार ये देह रूपी घर मैंने बाबा को दे दिया, तो इस घर के अंदर भी, इस मंदिर के अंदर भी नाना प्रकार की कर्म इंद्रियां हैं, आंख है, कान है, नाक है, मुख है, मन है, टांगे हैं, अनेक प्रकार की कर्म इंद्रियां हैं, जो अगर हमें वो अपनी ओर आकर्षित करती है तो कोई हमने दिल से नहीं दिया, फिर मुख से कहा कि मैंने तुझे दे दिया है ना, परंतु अगर दिल से दे दिया तो बुद्धि के अंदर एक धारणा बन जाएगी, ये मेरी वस्तु नहीं, ये मेरी आंखें नहीं, ये मेरे कान नहीं, ये मेरा मुख नहीं, ये मेरी टांगे नहीं, क्योंकि मैंने उस प्रभु के आगे समर्पणम कर दिया, कर दिया। अब जब समर्पण कर दिया मेरा नहीं तो मैं उसका क्या बन गया, और भगवान ने हमें कहा तो फिर इसको ट्रस्टी होके संभाल, तो मैं एक ट्रस्टी हूं। अब ट्रस्टी जो है, ट्रस्टी मतलब ट्रस्ट, सत्य, सत्य, सत्यता जिसके जीवन में होगी वो इसका पूर्ण रीति से ट्रस्टी होगा और कहेगा इसके द्वारा मैं कुछ गलत काम नहीं कर सकता। ये है त्याग, सच्चा त्याग। तो त्याग के कदमों को अगर आगे बढ़ाए तो सबसे पहला त्याग है मैं और मेरे का त्याग, ठीक है, और दूसरा त्याग है विषय भोगों का त्याग, तीसरा त्याग है सर्व प्रकार की इच्छाओं का त्याग, चौथा त्याग है जहां मेरी अनेक जन्मों की अनेक प्रकार की आदतें हैं उन सब आदतों का त्याग। अगर वो आदतें भी मुझे अपनी ओर कहती है तो वो मैं त्यागी नहीं हुआ। आप देखेंगे कई प्रकार की आदतें मनुष्य होती है जो उसका गुलाम होता है, یہ بات سناتے ہوئے مجھے مہاتما گاندھی جی یاد آ گئے. مہاتما گاندھی جی نے دیش کو آزاد کرنے کا سنکلپ کیا تھا. انہوں نے انقلاب زندہ باد کا نعرہ لگایا تو ان کی وانی میں وہ اوج نہیں آیا جو آنا چاہیے. تو جب اوج نہیں آیا انہوں نے کہا میں اتنا پریاس کر رہا ہوں, مجھے اپنے بھارت دیش کو ستنتر کرنے کی بہت اچھا جاگرت ہو گئی ہے, پر لوگ میری آواز کیوں نہیں سنتے. پھر انہوں نے, وہ پربھو پریمی تو تھے, گیتا کے ابھیاسی بھی تھے, تو انہوں نے ایکانت واس لے کر کے منن کیا, سودھیائے کیا, سو کا نریکشن کیا, سو سے باتیں کرنا شروع کیا. جب سو چنتن کیا, سودھیائے کیا, نریکشن کیا, تو ان کو لگا کہ میں غلام ہوں. اب میں غلام بھارت کو ستنتر بنانا چاہتا ہوں, کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. پھر انہوں نے اپنے آپ کا سودھیائے کیا, یوگ سادھنا کی تپ کیا, تپ کر کے اپنے اندر کی وکرتیوں کو اس میں سواہا 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 کیا, جو ان کو اپنی مانسک وکرتیاں اندر میں دکھائی دیتی تھی, پرانی عادتیں جو ان کو دکھائی پڑی, جو بھی کچھ کمیاں ان کو اپنی دکھائی پڑی, اس کے لیے درڑ سنکلپ کی تلی لگائی کہ اب مجھے اگر دیش کو آزاد کرنا ہے تو پہلے مجھے ستنتر ہونا ہے نا. تو کیا کیا ہوگا, کیونکہ وہ غلام کس کے تھے, کستوربا کے غلام تھے, وہ ایک دن بھی اس کے بنا نہیں رہ سکتے تھے. تو جب انہوں نے اپنے آپ کا سویدھائے کیا, سوچنتن کیا, منن کیا, اپنے آپ کو اس غلام گیری سے مکت کیا, پھر گئے کستوربا ماتا کے پاس, کہنے لگے کستوربا میں تمہارے سے ایک سہیوگ لینا چاہتا ہوں. وہ تو پہلے ہی تیاگ کی مورت تھی. اس نے کہا کیا چاہیے؟ کہا میں آج سے لے کر تم کو ماں کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں. ماں کے روپ میں میں نے تجھ کو اپنے من میں سے سویکار کر لیا ہے. اس نے کہا تتھاستو, مان اس نے ہاں کر دیا. پھر انہوں نے انقلاب زندہ باد کا نعرہ لگایا تو لوگ ان کے پیچھے پیچھے پڑ گئے. ماتاؤں نے اپنے سہاگ پتی تک دے دیے, بچے بوڑھے دھن دولت کوئی چیز کی ان کے آگے کمی نہیں رہی. اور اسی کے بل سے, اپنی سنکلپوں کی طاقت سے, اپنے تیاگ اور تپسیا سے انہوں نے کیا کیا, بھارت دیش کو بنا استر بنا شستر کے سوتنتر کرا دیا ہے نا. ٹھیک اسی پرکار آج ہمارے پتا ہم کو کیا روز روز آدیش اور سندیش دیتے ہیں, روز روز ہمارا باپ دادا ہم کو کیا آدیش اور سندیش دیتا ہے کہ بچے تمہیں اپنے آپ کو سر پرکار کی غلام گریوں سے مکت کرنا ہے. کہتے تمہیں سو کے اوپر راج کرنا ہے, تمہیں اپنی کرم اندریوں کے اوپر راج کرنا ہے, تمہیں اپنے آپ کو اتنا تپسیا کر کے اتنا شریشٹھ اور مہان بنا لینا ہے جو تیری وانی میں وہ اوج ہو, تو جہاں کھڑا ہو جائے وہاں تیرے پیچھے پیچھے لوگ لگے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بہنیں دادیاں 14 بٹی کر کے نکلی, حالانکہ اس سمے اتنا اینٹی پروپگنڈا تھا, परंतु उनकी त्याग ने, उनकी तप ने, उनकी योग बच्ची ने, उनके सुंदर चमकते हुए रूपों ने, उनकी नैनों ने, उनकी ओम की ध्वनि ने एक नया मोर, एक नई दिशा दे दी, जिसका प्रभाव आज हम और आप हैं। हालांकि इतना एंटी प्रोपेगेंडा था, कोई ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए आई है क्योंकि उनकी ड्रेस ऐसी थी, कोई कुछ बोलता, कोई कुछ बोलता, परंतु इतना सब कुछ होते हुए उस त्याग की, उस तपस्या की, उस एक बल और एक भरोसे की बलिहारी है जो आज कितना उन्नति के शिखर पर पहुंच रहे हैं। ब्रह्मा बाबा की भी कमाल, मम्मा की भी कम कमाल नहीं है। उन्होंने पहले हर चीज का स्वयं त्याग किया, रात रात बैठकर के तपस्या की, फिर उसके अनुभव करके दूसरों को अनुभवी बनाया। आज बाबा कहता है कि मेरी प्रत्यक्षता तेरे द्वारा होनी है, कहता है, कहता है। अब कौन करेगा प्रत्यक्षता? वो तो अव्यक्त में बैठे हैं, अव्यक्तता किसकी बुद्धि जाएगी, है ना? हम बच्चे बाप के कदम चिन्हों पर चले तो असली त्याग है सर्व कर्म इंद्रियों के ऊपर हमारा राज्य हो, मन के ऊपर राज्य हो, सारे संस्कारों को हम इतना सुधार ले जो आज लगे कि सचमुच सोने जैसा जीवन है। मुझे याद आता है, मैं बचपन में एक हमारे घर में एक भागवत होता था, है ना? उस भागवत के अंदर बहुत सुंदर सुंदर हस्तकला से बनाए हुए चित्र होते थे देवी देवताओं के, और उन चित्रों के अंदर जो शक्ल उनकी सूरत होती थी देखते थे तो ऐसा लगता था जैसे सूर्य सवेरे सवेरे उदय होता है तो लालिमा होती है उनके शरीरों में, वो लालिमा दिखाई देती थी। और आज आप देखेंगे जो भी हमारे भाई बहन असली योगी है, असली त्यागी है, असली तपस्वी है, उनके इर्द गिर्द आपको एक ओरा दिखाई देगा लाइट का। वो किस चीज का है, वो किस चीज का है? ऐसी बहनों से भी जब वो तप करके निकली थी तो योग में बैठती थी, ओम की ध्वनि लगाती थी तो सबको लाइट के साक्षात्कार होते थे, है ना? और रियलाइजेशन होती थी कि जीवन हो तो ऐसा हो, है ना? आज हम उसी बाप के बच्चे हैं, तो क्या त्याग के साथ साथ तपस्वी हैं? इसमें कोई राय नहीं कि आप सब तपस्वी नहीं है, तप किया है क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को मन का तप करना सिखाया, दृष्टि का तप करना सिखाया, वाणी का तप करना सिखाया। मन के तप में हमें बाबा ने ये कहा कि तुम बच्चे शुभ भावना और शुभ कामना में ही रहना, यह है मन का तप। समस्त विश्व के लिए शुभ भावना और शुभ कामना में रहना, और दृष्टि का तप आत्मिक दृष्टि से एक दूसरे को देखना या गुणग्राही दृष्टि से देखना, ये हमारी दृष्टि का तप बाबा ने हम बच्चों को सिखाया। और वाणी का तप, कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, प्रेम से बोलो, युक्ति युक्त बोलो। अब जिन बच्चों का ये ध्यान इस बात की ओर गया होगा, उनके जीवन में वो निखार जो कहते हैं तप से निखार पैदा होता है, तो वो निखार आ सकता है क्योंकि योग एक ऐसी अग्नि है जिस अग्नि के अंदर जो कुछ डालो वो काले से सफेद हो जाएगा, है ना? तभी कहा गया योगाश्च अग्नि दग्धो विकर्मा, योग एक ऐसी अग्नि है जो सब प्रकार के विकर्मों को नाश कर देती है। परंतु होता क्या है, जब हम शुरू शुरू में चलते हैं तो त्याग भी करते हैं, तपस्या भी करते हैं, योग साधना भी करते हैं, मौन भी रखते हैं, फिर धीरे 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 तपस्या की जगह और बातें आने लग जाती हैं हम लोगों के जीवन में, जिससे हमारी इंटरनल पावर कम हो जाती है। तो अगर ये बात याद रहे, मुझे विश्व को अपने जीवन से नई दिशा देनी है, मुझे संसार को स्वर्णिम संसार बनाना है, मुझे कलयुग से सतयुग लाना है, मुझे तमो प्रधानता से सतो प्रधान बनाना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, मुझे अपने परिवारों को भी सुधारना है, वहां भी सतयुग का वास करना है, वहां भी दिव्य गुणों का वास करना है, तो क्या करना होगा, उसके लिए हमें तप अर्थात समय निकालकर 2 घंटा 4 घंटा, जैसे आज आप सभी समय निकाल के आए, सब बातों से फारग होकर के आए, तो आराम से 3-4 घंटा बैठ करके योग कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्यों किया, योग किस लिए करते, जब हमें ज्ञान है बाबा मेरा है, मैं बाबा की हूँ, फिर योग क्यों करते हैं हम, योग इसलिए करते हैं, तपस्या इसलिए करते हैं, जो हमारे जन्म जन्मांतर के मैले कुचैले संस्कार है, जो हमने विकार और विकृतियां की हुई है, जो विकर्मों का बोझ मेरे सिर पर है, वो उतरता ही नहीं है ना, बार बार मुझे नीचे की तरफ ले जाता है, मेरी चढ़ती कला होने ही नहीं देता, तो उसके लिए हम बीच बीच में तपस्या करते हैं, करते हैं। आज अगर हम अपनी एक योजना बना ले अपने लिए कि मुझे एक श्रेष्ठ जन बनना है, मुझे कर्मातीत स्थिति को लाना ही है, मुझे विकर्माजीत बनना ही है, तो मुझे अंतर्मुक्ता की कुटिया में जाना ही है ना, क्योंकि जितना मैं अंतर बीच बीच में घंटा 2 घंटा निकाल करके अपने आप को अंतर्मुक्ता की कुटिया में नहीं बिठाएंगे, तप नहीं करेंगे, तब तक हमारे ये मैले कुचैले संस्कार बदली नहीं हो सकते, क्योंकि हम बंदी बन चुके हैं उसके। अब बंधन तोड़ने के लिए शक्ति चाहिए ना, शक्ति चाहिए ना, वो शक्ति कहां से आएगी, योग साधना से आएगी, त्याग से आएगी, तप से आएगी, वो शक्ति ऐसे नहीं आ सकती चलते फिरते, ठीक है तपस्वी का मतलब है चलते फिरते बैठ करके सिर्फ योग नहीं लगाना, बाबा कई बच्चे कहते थे बाबा हमको निष्ठा में बिठाओ निष्ठा में बिठाओ, बाबा कहते थे नहीं, योगी का मतलब क्या है, चलते फिरते उसकी याद, जिससे तेरा योग है, जिससे तेरा लगाव है, जिसकी तरह तेरे सच्चे संबंध है, उसको चलते फिरते तेरे अंदर उसकी याद में रहना। बाबा तो इतने तक भी कहता था शिव शिव ही नहीं कहना है ना, ओम शांति भी बार बार नहीं बोला है ना, निरंतर याद में रहना, अजपा जाप करना, वो उसके लिए कोई स्थूल वस्तु स्थूल माला या स्थूल चीजों की जरूरत नहीं है, उसके अंदर सच्चा प्रेम चाहिए और अंतर्मुक्ता की कुटिया चाहिए। दो चीजें जब हमारे पास होगी, हम बीच बीच में अंतर्मुक्ता में चलते जाएंगे और अपने आप से बातें करके अपनी कमजोरियों की आहुतियां डालते जाएंगे, तो क्या होगा, ये यज्ञ सफल होगा। भगवान ने यज्ञ तो रचा है, किसके लिए यज्ञ रचा है, आप देखेंगे संसार के अंदर भी जब कोई प्रकृति की तरफ से आपदा आती है तो यज्ञ रचे जाते हैं, परंतु वो यज्ञ संपन्न कब होता, संपन्न कब होता, जब संपूर्ण आहुतियां पड़ती। तो आज बाबा ने ये यज्ञ रचा है, इस यज्ञ से ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित होनी है, इस यज्ञ से ही स्वर्णिम संसार आना है। तो जब हम सब की पूर्ण आहुतियां इसके अंदर नहीं पड़ेगी तो कैसे होगा। कहते हैं कुछ समर्पण कर दो, कुछ स्वाहा कर लो, कुछ सफल कर लो। अब समर्पण क्या करना, जब तक अर्पणम समर्पणम नहीं किया तो कुछ नहीं किया। समर्पण बाबा ने क्या समर्पण कराया हम सबसे, देह, देह के पदार्थ, देह का वाहन, देह के सामान, देह की वस्तुएं, देह की जात पात सबको समर्पित कर दो। कहा ये बात कहता है रोजाना, है ना। अब उसके बाद स्वाहा, स्वाहा क्या करना, क्योंकि यज्ञ रचा है उसने और हमको स्वाहा करना ही है, हमारे को तपस्वी बनना ही है। तो स्वाहा क्या करना, जो चलते चलते समर्पण करने के बाद, त्याग करने के बाद, फिर एक और बात हमारे अंदर पैदा हो जाती है, वो है बुद्धि का अभिमान। बुद्धि का अभिमान, मैं पढ़ा लिखा, मैं अनुभवी, मैं इतना सुंदर प्रशासन करने वाला, और मेरे जैसा समझदार दुनिया में कोई नहीं है ना, और मैं क्या नहीं कर सकता, ये सूक्ष्म में अभिमान पैदा हो जाता है। भगवान कहता है इसका भी त्याग कर, त्याग का भी त्याग कर। इस तुमने लोहे की जंजीर तो सह तोड़ दी, लोक लाज कुल मर्यादाओं की लोहे की जंजीरें हैं, वो तूने सह तोड़ दी, परंतु ये चलते चलते जो अनेक प्रकार के अभिमान तेरे अंदर पैदा हो गए, वो है सोने की जंजीर। अब सोने की जंजीर लोहे की जंजीर से ज्यादा खतरनाक होती है ना। उसको लोहे की जंजीर को भी तोड़ने के लिए अग्नि में डालना पड़ेगा या कतरनी से काटना पड़ेगा। कतरनी से काटेंगे नहीं, वो बहुत तेज धार वाली कोई कतरनी होगी तब कटेगा। पर इस सोने की जंजीर को काटने के लिए भी भट्टी के अंदर डालना पड़ेगा, तब वो नरम होगी, तब वो काटी जाएगी। तो ये बहुत सूक्ष्म है भाई साहब, भाई और बहनों, क्योंकि जब अनेक प्रकार की उपलब्धियां पैदा होने लगती है जीवन, क्योंकि ये तो संसार प्रसिद्ध बात है कि जब तुम भगवान के आगे सब कुछ निछावर करते हो तो भगवान तुझे सब प्रकार के वैभव देता है, सब प्रकार की। तू एक कदम चलता है तो तू वो हजार कदम तेरे आगे चल करके सब कुछ प्राप्त कराता है। अब वो जो उपलब्धियां अनेक प्रकार की पैदा हुई, उस उपलब्धियों को मैंने स्वीकार कर लिया, उस वैभव को, उस डिग्रियों को मैंने स्वीकार कर लिया, चमत्कार को नमस्कार कर दिया, उसके साथ प्यार कर लिया, उसके साथ मोहम्मद और लगाव जोड़ लिया, तो क्या होगा, डिग्रेशन फिर चालू हो जाएगी। क्योंकि अभिमान आ गया ना, ये मेरे है, ये मेरी कला है, ये मैंने पैदा किए हैं, ये मेरे हुनर से सब निकला है ना। तो उसे जब हुनर का चमत्कार दिखाने लगेंगे तो जिसने असली तुझे बनाया है वो तो निकल गया बीच में से। जब वो ही निकल गया तो बाकी क्या रहा तेरे पास, कुछ नहीं रहा, है ना। तो इसलिए त्याग का भी त्याग करना बाबा ने हम बच्चों को सिखाया। आप देखेंगे हमारे शास्त्रों के अंदर ये हम सब जानते हैं कि सोने का हिरण कभी हो नहीं सकता, पर सीता जी को सोने के हिरण की लालसा हो गई ना। अब वो सोने का हिरण तो राक्षस, एक राक्षस ने अपना ये रूप धारण किया था ना, पर सीता जी ने कहा, पहले वो राम जी गए वहां, वो वापस नहीं आए, तो सीता जी लक्ष्मण जी को कहने लगी कि मेरे को तो, और वो राम अनेक प्रकार की राम की तरफ से आवाजें आने लगी, तो वो कहती है कि तुम जाओ, तुम्हारा भैया कहीं आपदा में है। पर वो कहते नहीं, राम को कभी आपदा नहीं आ सकती माता। परंतु फिर भी वो एक जिद लगा के बैठ जाती है, तुम जाओ। अब वो रेखा लगा के चला जाता है, लक्ष्मण रेखा लगाकर चला जाता है। फिर क्या होता है, साधु वेश में रावण आ जाता है। और फिर क्या होता है, ये उपलब्धियां साधु वेश में आती है हमारे पास और हमारे को स्वाधु बना देती है। और जब ज्यादा स्वाधु बन जाते हैं तो रावण के माया के चमत्कार में आ जाते हैं, ईश्वरीय चमत्कार से निकल जाते हैं। ठीक है ये बात। तो ये आएंगे, ये वैभव आएंगे, परंतु उनको मन से स्वीकार नहीं करना, जितना जरूरी है उतना तक जीवन को चलाने के लिए। क्योंकि अमानत जो मिली हुई है शरीर हमें, जितना जरूरी है उतने तक, परंतु उन चमत्कारों के पीछे बह नहीं जाना। भगवान इसी का नाम है सर्वंश त्यागी, है ना। त्याग का भी त्याग, प्राप्तियों का भी त्याग, सब प्रकार का त्याग, वृत्तियां जब हमारी बन जाएंगी तब आप देखेंगे जीवन में चरती कला अपने आप होने लगेगी। बैठोगे एकदम योग लग जाएगा ना? तो मैंने जो कहा योजना बनाओ, क्योंकि इन कमियों को निकालने की, कहीं हमारा त्याग निष्फल ना हो जाए। हम सब ने बहुत त्याग किया है, क्योंकि चलते चलते दो दो शत्रु, दो बातें हमारे जीवन के अंदर आ जाती हैं। एक आता है ये प्राप्तियां, दूसरा आ जाता है आलस और अलबेलापन, है ना। आलस और अलबेलापन क्या करता है, हमारे अंदर इस तरह की बातें पैदा करना शुरू कर देता है। अरे रोज रोज तो वही मुरली सुनते हैं, अरे रोज रोज ही तो बातें कर रहे हैं, अरे रोज रोज सुनते सुनते कान थक गए हैं, अरे रोज रोज बना कौन है, इसको देखो उसको देखो उसको देखो। ये बातें हमारे जीवन के अंदर आने लगती है, दो शत्रु पैदा हो जाते हैं, जो हमारे को हमारी उपलब्धियों से, हमारे चरती कला से, हमारे को फिर बैक टू दी पवेलियन की तरफ ले जाने लगते हैं, है ना। तो उसके लिए हमें जरूर एक योजना बनानी चाहिए कि हम ज्ञान मुरली को जरूर पढ़े, अमृत वेला जरूर करें, नुमा शाम के टाइम भी योग जरूर लगाएं, और उसके साथ साथ रेगुलर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो सप्ताह में दो तीन दिन बीच बीच में निकाल करके मौन भट्टी करें, और उस मौन भट्टी के अंदर मन का मौन हो, बाहर का नहीं। क्योंकि जब मन का मौन होगा, मन गहराइयों की तरफ जाएगा और अंदर अंदर ही बाबा के अनेक संबंधों में, बाबा से की अनेक प्राप्तियों में खो जाएगा, लव में लवलीन हो जाएगा, वो सुख जो है, वो अतीन्द्रिय सुख जो है, उनकी अनुभूतियों में जब व्यक्ति खो जाता है तो उसको संसार का सब पदार्थ वस्तु फीकी नजर आने लगती, कोई सार नजर नहीं आता उसको फिर, है ना। तो अगर हम चाहते हैं सार युक्त बन जाएं, तो रोज रोज अंतर्मुखता की कुचिया में, कहा भी जाता है योगी जो होता है वृक्ष के नीचे बैठकर एक आसन लगा करके बैठता है। बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बच्चे तुम्हें कल्प वृक्ष के नीचे बैठना है, और ये कल्प वृक्ष के नीचे बैठने का समय है, जर है, ये संगम है ना, इसके अंदर बैठकर तुझे अटूट मतलब गहरी तपस्या करनी है ना। और फिर क्या होगा, जर के नीचे बैठ के जो तप करेगा वो ही भाग्यवान बनेगा, है ना, وہی منوکامنا ہے. کلم فرکش کے نیچے بیٹھ کر جو تب کرے گا اس کی سرو منوکامنا پورن ہوگی, ہے نا. اور پھر سارے کلم وکش کا گیان بھی پراپت ہو جائے گا. اور آسن ایک رس ستھتی کے آسن پر وراجت ہونا ہے. وکرم جو وناش ہوں گے وہ بیج روپ میں ہوں گے. پاور فل ستھتی کے اندر جب ہم بیٹھیں گے تب ہی ہمارے وکرموں کا وناش ہوگا اور ست کرموں کی ست گنوں کی پرویشتا ہمارے اندر آتی جائے گی. جس پر میرے کو ایک چھوٹا سا پرسنگ یاد آتا ہے کہ ایک لکڑ آ رہا تھا, وہ بہت محنت کرتا تھا روز لکڑیاں کاٹ کر کے لکڑیوں کو بیچا تھا. بےچارا سارا دن اتنی محنت کرتا اور صرف تھوڑا سا ان اور دانا لے پاتا تھا جو اپنے بچوں کو اس دن کا گزارا کرا سکے. وہ روزانہ وہ لکڑیاں کاٹتا رہتا, روزانہ اس کا یہی کام چلتا رہتا. جیسے ہم بھی روزانہ محنت کرتے شیوا شیوا شیوا, گہرائی میں نہیں جاتے اوپر اوپر, ہے نا. تو وہ بھی ایسے ہی تھا, ہے نا. تو ایک سادھو روز روز اس کا نظارہ دیکھتا رہتا تھا. تو وہ سادھو اس کو آ کے بولتا ہے, ارے لکڑ آ رہے تو بھیتر جا, تو بھیتر جا. تو جب وہ جنگل کے بھیتر میں چلا جاتا ہے تو اس کو چندن کے پیر ملتے ہیں. وہ اس کو کاٹتا ہے اور جا کر کے مارکیٹ میں بیچ کے آتا ہے. اس کو بہت سارا دھن اپلبدھ ہوتا جس سے اپنا جیون نرواہ وہ بہت اچھی طرح سے کر لیتا ہے. پھر کچھ دن کے بعد پھر وہ لکڑ آرا سادھو کے پاس جاتا ہے تو سادھو بولتا ہے, ارے لکڑ آرے تو اور بھیتر چلا جا. تو اس کو چاندی کی کھان ملتی ہے جس سے وہ بھرپور چاندی اٹھا لیتا. پھر اور بھیتر چلا جا تو اس کو سونے کی کھان ملتی ہے. ایک دن لکڑ آرا بولتا کہ میں تو بڑا ملا مال ہو گیا اس سادھو کے کہنے سے, پر یہ سادھو برکش کی چھایا کے نیچے کیوں بیٹھا رہتا ہے. اس کے من میں کوشچن پیدا ہو گئے. تو کوشچن اب وہ کیا کرے. اب سادھو کے پاس گیا, کہا مہاراج میں آپ کے پاس ایک پرشن لے کے آیا ہوں. آپ نے تو میرے کو کہا بھیتر جا بھیتر جا بھیتر جا, مجھے تو بہت کچھ مل گیا بھیتر جانے سے, ہے نا. پر آپ جو برکش کی چھایا کے نیچے بیٹھے رہتے ہو, آپ کے نہیں بھیتر جاتے. کہا بھیتر جانا بھی دو پرکار کا ہوتا ہے. ایک ہے بھوتک پدارتھوں کے لیے بھیتر جانا, ایک ہے اصلی آنند پرمانند جیون مکتی پراپت کرنے کے لیے بھیتر جانا. میں اس کے لیے یہاں بیٹھ کے تپسیا کرتا ہوں جس سے مجھے بہت شانتی اور آنند کی اپلبدھیاں ہوتی ہیں. تو میرے پیارے بھائی بہنوں, بھیتر جاؤ, کیونکہ بھیتر جانے میں انترمکتا کی کٹیا میں جانے میں ایک کے انت میں جانے میں ایک ساگر ہے. ایک ساگر ہے وہ سرو گنوں کا سرو شکتیوں کا بھنڈار ہے. وہ کون ہے؟ وہ میرا بابا ہے, ہے نا. میرا بابا ہے کہ کسی اور کا؟ ہمارے کو اس سمے بہت سامنے ماتاؤں کا جب درش دادیاں سامنے بیٹھ کے وہ گیت گاتی ہے میرا بابا میرا بابا, ہے نا. تو ماتائیں بہنیں بھائی سب ناچ رہے ہوتے ہیں, ہے نا. تو مجھے اس سب لگتا ہے کہ یہ ناچنا الپکالین ہے یا سدا کالین ہے. سچ مچ میرا بابا, میں بابا کی بابا میرا ہے, یہ اندر تک ہم نے سویکار کر لیا اور اس نے میرے کو سویکار کر لیا, ہے نا. میں نے جس کو دل سے سویکار کیا ہے, جس کے لیے میں نے سب کچھ اپنا نچھاور کیا ہے, وہ میرے کو ضرور سویکار کرے گا, میری چتر چھایا بن کر کے رہے گا. میں کہیں بھٹکنے لگوں گی تو وہ میری بانہ پکڑ لے گا آ کر کے, بچی بچی تو کہاں جا رہا ہے, یہ تیرے انکول نہیں ہے. سمجھ گئے میری بات؟ کیونکہ میں نے اس کو سویکار کیا, اس نے میرے کو سویکار کیا, دونوں ایک دوسرے کے نزدیک آ گئے تو کئی مایا کی چھایا پڑنے لگی. भगवान आकर के हाथ पकड़ लेगा बाबा, या कोई ना कोई ऐसा रूप खड़ा हो जाएगा जिसे लगेगा अरे वो बुद्धिवानों का बुद्धिमान है, उसने मेरी रक्षा कर ली, मेरे को सहायता कर ली। और वो करता है जो सच्चे दिल से बाबा को अपना बना ले लेते हैं, जो त्याग और तप को अपने जीवन की आधारशिला बना लेते हैं, जो योजनाबद्ध अपने जीवन को चलाते हैं, बाबा उनका हाथ ऐसा मजबूत पकड़ लेता है जो छुराना चाहो ना तो भी नहीं छुरा सकते, है ना। तो हम ऐसे बाबा के बच्चे हैं जो हमारी जीवन की नैया को सैलवेज करके इस विषय सागर से कहां ले जा रहा है, है? स्वर्णिम संसार की ओर ले जा रहा है। तो हमें स्वर्णिम जैसा सतो प्रधान तो बनना ही होगा, क्योंकि अगर स्वर्णिम जैसा सतो प्रधान नहीं बनेंगे तो हमारी मनोस्थिति हमारे को खुद से ही कहेगी अरे तूने जीवन भी अपनाई पर ना तू इधर का रहा ना उधर का रहा, है ना। दो पाटन के बीच में क्या होगा, क्या होगा, थोड़ा पूछो अपने आप से। तो हमें दो पाटन के बीच में नहीं रहना, एक का ही होकर रहना है, एक के लिए जीवन दिया है, जो वो दिशा निर्देशन करता है उसी के अनुकूल चलते चले जाए, त्याग और तप को अपने जीवन का एक अंग बना ले तो वहां सत्यता दिव्यता सुंदरता निखार सब कुछ आ जाएगा, संपन्नता अपने आप आपके पांव में आके पड़ेगी, है ना। आज संसार के अंदर कहां से ये चले, कहां बेगरी पाठ आया और कहां आज इतने बड़े बड़े संस्थान बनते जा रहे हैं, ये किसकी बलिहारी है, ये त्याग तप एक बल एक भरोसा और मन वचन कर्म की पवित्रता की ही बलिहारी। इस चमत्कार के आगे भी हम बच्चों को नमस्कार करके और कुछ सीख लेना चाहिए कि जब ये सब हो सकता है तो मैं जीवन भगवान के हवाले जब कर चुका हूं दृढ़ता से क्यों नहीं करूं, सोच सोच के क्यों करूं। बलि का बकरा एक ही बार चढ़ता है। मुझे याद आ गई ये बात आपको बताते हुए कि एक बार कलकत्ता में हम जगदीश भाई के साथ गए थे तो वहां नवरात्रों के दिनों में बकरे की बड़ी बहुत बलि चढ़ती और वो बलि का सीन बड़ा भयानक होता और वो जो पुजारी लोग होते वो उनकी शक्लें भी बड़ी भयानक होती, है ना। अब बहुत सारे बकरों को श्रृंगार श्रृंगार के लाइन में खड़ा किया हुआ था। हमारे साथ जगदीश भाई के साथ हम 8-10-15 लोग थे, है ना। तो क्या देखते हैं कि बकरे को ले आ रहे और कटहरा बना होता है, एक धक्से मारते हैं आपको अलग हो जाता है, सिर नीचे से बॉडी से अलग हो जाता और उसको जाकर के खून सहित जाकर के माता काली माता के ऊपर चढ़ाते। जगदीश भाई के अंदर तो बड़ा जोश पैदा हो गया, अरे तुम निर्जीव बकरे को मारते हो, तुम पर पाप नहीं चढ़ता। कहते हैं ये तो हमारी प्रथा है, हम इसको रोक नहीं सकते। परंतु वो वास्तव में बकरा ही क्यों मिला उन लोगों को, भगवान ने भी हम सब से मैं की बलि ली थी। अब वो मैं खुद तो कर ली, मैं का अंत नहीं हो सकता तो जाकर के स्थूल बकरे की बलि थी, है ना। वो इतना भयानक सीन होता था, अभी भी होता होगा नवरात्रों के दिनों में, अभी भी होता होगा वहां भैंसे की, नेपाल में भैंसे की बलि चढ़ती, है ना। तो वास्तव में ये भी हमने जो संगम युग पर किए हैं उसी का यादगार भक्ति काल में चला है। तो भगवान भी आकर के रोज हमसे कौन सी बलि लेना चाहता है, मैं की ना, मैंने किया, मैं ये कर सकता हूं, मुझे یہ چاہیے وہ چاہیے, میں کے بنا سنسار کا کاروبار نہیں چلتا. تو بھگوان کہتا ہے اب تو صرف میں نہیں بول, تیرا 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 بولو, ہے نا. تو جب تیرا ہے سب کچھ, تیرا ہے اور میرا کچھ نہیں ہے, تو تیرے کو تو میں سنبھال کے بھی چلوں گا اور تیرے کے کارے میں اپنا جو کچھ بھی ہے اس کو سدوپیوگ بھی کروں گا. یہی سچی سادھنا ہے, یہی سچا تیاگ ہے, یہی سچی تپسیا ہے. اب جتنا کر لو اتنا بھوشیہ میں, جو جتنا کرے گا اتنا بھوشیہ میں بھرپور بنے گا. ایسی میری آپ سب کے پرتی شبھ کامنا اور شبھ بھاونا ہے. اوم شانتی شانتی شانتی.